हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय सात श्लोक संख्या 47 एंड 48। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वता विदूर काष्ठा यमुः कुयोगिना निरस्त साम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरोस्य ते नमा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद फुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादय ये नीच पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतैर्महते य इमां पुरो विभो निर्माय शेते यदमोषु पुरुष भुङ्क्ति गुणांशो दशषोडशात्मक सोलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 47। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोधमात्रम शुद्धम समम सदसत परमात्मतत्वम शब्दो नयत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्त्र सुखं विशोकम् शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोधमात्रम शुद्धम समम सदसत परमात्मतत्वम शब्दो नयत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्त्र सुखं विशोकम्। अनुवाद। परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप से सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना हैं। वे संदूषण मुक्त हैं, वेद रहित हैं और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण हैं, जिनमें सकाम कर्म के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिनके सामने माया ठहरती है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से एक एक शब्द को हमें समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परम भोक्ता भगवान ही परम ब्रह्म या परम आश्रित हैं, क्योंकि वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोधि मात्रम शुद्धम समम सदसत परमात्मा तत्वम। वो भगवान है और वो समस्त कारणों के कारण है। इस भौतिक संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म परम ब्रह्म का एक लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश उसके प्रतिरूप अंधकार से भिन्न धारणा है, किंतु प्रकाश में विविधता होती है। जैसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं, इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थात प्रत्येक वस्तु के अंतिम स्रोत का परम साक्षात्कार है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जांपल दे रहे हैं कि जिस तरह प्रकाश जब दिखता है तो लगता नहीं है कि वो प्रकाश आ रहा कहाँ से है, लेकिन जैसे जैसे कोई प्रकाश के निकट जाता है तो उसे ये अनुभव होता है कि प्रकाश किसी प्रकाश पुंज से आ रहा है। उसी तरह से भगवान का जो प्रथम जो भगवान का स्वरूप है निराकार स्वरूप, वो एक ज्योति ब्रह्म ज्योति की ओर, लेकिन जैसे जैसे जीव भगवान की ओर जाता है तो उसे पता चलता है भगवान ब्रह्म भी है परमात्मा भी है और वही साक्षात स्वरूप का है जिसके द्वारा ये ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है, जिसके द्वारा भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित होते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे अर्थात प्रत्येक वस्तु के अनंतिम स्रोत परम साक्षात्कार का है। अतः भौतिक उन्माद की विषमता के विरुद्ध प्रथम निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करने में निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार का समावेश हो जाता है। भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है, जैसा कि प्रथम स्कंद में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि परम पूर्ण के तीनों पहलू ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। जो जैसे हमने पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 में पढ़ा था, वदन्ति तत्त्वविदः सत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो बुद्धिमान वही है जो भगवान के इन तीनों पहलुओं को समझता है और भगवान के साक्षात्कार स्वरूप को स्वीकार करता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रतिबोध मात्र भौतिक अस्तित्व से सर्वथा विपरीत अनुभूति है। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे की चटपटाहट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। यह निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवस्था है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो भगवान से बिल्कुल भिन्न है। भौतिक उन्माद जो है उसमें क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है उसमें ये सब नहीं होता है। आत्मा भी आत्मा के अंदर भी नहीं होता, आत्मा भगवान का अंश है। तो निर्विशेष ब्रह्म की जो प्रारंभ, भगवान का जो प्रारंभ स्वरूप है, पहलू है, वहां से इस बात को पता चलता है कि यहाँ भौतिक जगत के सारे जितने अवरोध हैं उनको पार करके भगवान का स्वरूप स्टार्ट होता है। वो तो पहली भगवान का पहला बोध ये है कि वो निराकार है। तो परमेश्वर हर वस्तु के परम आत्मा है, अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वह उन्माद से भरा होता है। जब भगवान से भेंट होती है तब वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। वे देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है, अपितु समस्त जीव आत्माओं के लिए पूर्ण निरावृत शुद्ध प्रेम के पात्र हैं, क्योंकि वे हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम जागृत होता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमारे जीवन की एक सच्चाई को बता रहे हैं कि हर कोई जीव जो है वो प्रेम चाहता है और प्रेम करना चाहता है, प्रेम प्राप्त करना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। और प्रेम किससे करता है, जिससे कोई संबंध निर्माण करता है। माता अपने पिता पुत्र से प्रेम करती है, पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करता है, पिता अपने संतान से प्रेम करते, पति अपने पति, तो जहाँ संबंध होता है ना वहां पर प्रेम होता है। लेकिन ये संबंध सिर्फ कब तक, ये प्रेम कब तक टिकेगा, जब तक उसके अंदर भगवान का एक अंश है। ये प्रेम शरीर से होता नहीं है, हमको लगता ऐसा है कि ये शरीर से प्रेम है, लेकिन वास्तव में शरीर तो तब भी होता है ना जब उसकी आत्मा निकल जाती है। तो कहाँ जाता है वो प्रेम, जब ये कह देते हैं घर वाले कि इसको जला देना चाहिए अब, है ना। तो इसका मतलब है प्रेम शरीर से नहीं है और ना ही उस आत्मा से हमारा कुछ लेना देना है। वो तो हिसाब किताब पूरा करने के लिए आई थी। अब अगर शरीर से भिन्न होकर वो आत्मा हमारे साथ रात को रहने के लिए आएगी कि भाई अब मैं इसी घर में रहूंगी क्योंकि तुम तो सब मुझसे प्रेम करते थे, तो क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? नहीं, वास्तव में वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ उस भगवान के साथ होता है। परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा हुआ है वो भगवान का एक अंश रूप परमात्मा के स्वरूप में हमारे सबके हृदय में है, जिसके कारण हम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, समस्त जीव आत्माओं के लिए पूर्ण निरावर्त शुद्ध प्रेम के पात्र भगवान ही हैं, क्योंकि हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम जागृत होता है। मुक्त और बद्ध में पता है सिर्फ इतना ही अंतर है। बद्ध जीव आत्मा तब तक बद्ध रहती है जब तक वो भगवान के अलावा किसी और से प्रेम करती है, किसी और से आसक्त होती है। और जिस दिन उसका ये प्रेम और आसक्ति भगवान की ओर डाइवर्ट हो जाता है, उसी दिन से वो मुक्त आत्मा होती है। मुक्त होने के लिए मरने की नहीं, प्रेम करने की जरूरत है। और वो प्रेम परिपूर्ण भगवान के साथ यदि हो जाए तो हमारे सारे बंधन उसी समय टूट जाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह शाश्वत सुख का की अंतहीन धारा प्रवाहित होती है और उसके उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती। शाश्वत सुख, संसार में जब प्रेम करते ना तो वो शाश्वत दुख का कारण होता है। जिस दिन से आप किसी से प्रेम करते हो, वही व्यक्ति चाहे वो आपसे प्रेम भी करे, चाहे वो आपसे सिंसियर भी हो, वही व्यक्ति आपके दुख का कारण बनता है। उसको कोई प्रॉब्लम होगी, आप दुखी हो जाओगे। वो एग्जाम्स में फेल हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। उसको चोट लगेगी, आप दुखी हो जाओगे। वो बीमार हो जाओ, मतलब जिस जिससे आप प्रेम करते हो उस के कारण आपको दुख भोगना पड़ता है। इस संसार में हम देखते हैं, हम अपने कारण इतने दुखी नहीं होते हैं जितना हम अपने प्रेमियों के कारण दुखी होते हैं। वो जिसे माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं, ठीक है, वो बच्चे को इतना लाड़ से पालते हैं और फिर पता चलता है वो बच्चा किसी बुरी संगति में कोई बुरा कार्य करता है तो उसको कितना दुख होता है ना माता पिता को। उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रात को देर से भी आता है तो भी दुखी हो जाते हैं। उसको कुछ भी हो जाए, आप किसी से भी प्रेम करते हो, वो प्रेमी ही आपके दुख का कारण बनता है। लेकिन वास्तव में प्रेम तो सुख देने वाला होना चाहिए। तो जब ये प्रेम भगवान के साथ निर्माण हो जाता है, इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरह शाश्वत सुख की अंतहीन धारा प्रवाहित होती है। जब अंतहीन मतलब ऐसा सुख जो अक्षय है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, और वो सुख जीव आत्मा को सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम करने से प्राप्त होता है और उसके बंद होने का कोई आशंका नहीं है। जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके हैं, भगवान के साथ का संबंध कभी टूटता नहीं है, अतः उसमें न शोक है न भय है। ऐसा सुख शब्दों के द्वारा वर्णनीय अवर्णनीय है और यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिस अविच्छिन्न सुख के आदान प्रदान की चर्चा है, वह उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा का एक प्रकार से विरोध करना होता है, किंतु यह परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृत नहीं है। यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि भगवान का स्वरूप निराकार के साथ प्रेम नहीं बताया। उपनिषदों में भले ही निराकार स्वरूप के विषय में बताया गया है, लेकिन उपनिषदों की निर्गुण विचारधाराओं से ऊपर है ये प्रेम। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा का एक प्रकार है विरोध करना, यानी जैसे भौतिक वस्तुएं हैं उनसे अलग है, मतलब निर्गुण है, मतलब ये जैसे गुण भौतिक वस्तुओं में है ऐसे भगवान में नहीं है, किंतु यह परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। इसका मतलब है ही नहीं कि भगवान की इंद्रियां है ही नहीं, भगवान की इंद्रियां हैं मगर भौतिक नहीं है, उपनिषदों में ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है। वे सभी दिव्य तथा भौतिक पहचान के कलमस से रहित हैं। यही नहीं, मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है। जो हम अगर मुक्त हो जाएंगे तो तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास इंद्रियां नहीं होंगी, अन्यथा उनके बीच में अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता। इंद्रियां ही नहीं है तो फिर प्रेम का संबंध स्थापित कैसे होगा? भगवान तथा भक्त दोनों ही की सारी इंद्रियां भौतिक कलमश से रहित शुद्ध हैं। इसका कारण है यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं, जिसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है, सत असत परम। यहाँ इस श्लोक सेकेंड लाइन में जो बताया गया है, शुद्धम समम सदसत परमात्म तत्त्वम, वो भगवान शुद्ध हैं, परम सत्य हैं। सत और मतलब कारण कार्य सब कुछ भगवान ही हैं। वहाँ पर भ्रामक भौतिक शक्ति का वश नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष वह लजाती है। और भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियां शोक रहित हैं। मतलब वो जो दिव्य भगवान और भगवान के भक्तों का जो स्वरूप है, उसमें कहीं कोई दुख नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। और जब भगवान के साथ जीव का संपर्क हो जाता है तो उसको जो इंद्रियां मिलती हैं, उसके द्वारा वो सच्चित आनंद स्वरूप का ही प्रतीक रहता है, उसमें कभी कोई दुख नहीं होता। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना ना करते हुए उसे समझें। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भले जीव जो है वो भौतिक इंद्रियों के पार निकल जाता है जब भगवान को प्राप्त करता है या आध्यात्मिक जगत में जाता है, या भगवान की स्वयं भौतिक इंद्रियां नहीं होती, लेकिन वो आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वहां पर भी एक ऐसा इंद्रिय है, तभी तो वो प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में भौतिक अवधारणा से इंद्रियों की शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है ना, कि इंद्रियों को भौतिक वस्तुओं से शुद्ध करना चाहिए। भौतिक जगत में अपनी खुद की तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में उनका उपयोग उन प्रयोजनों के निमित्त किया जाता है जिसके निमित्त ये मूल रूप में बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है कि भौतिक जगत में निज इंद्रिय तृप्ति वांछा, हर एक बस अपनी ही इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा रखता है, और उसका क्या नाम है, निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम। और काम से क्या होगा, काम तो भगवान ने कह दिया, त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मना, काम क्रोध तथा, ये काम तो नरक का द्वार है, लेकिन वही इच्छा जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है, कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, तब वो प्रेम का नाम धारण। और जब भगवान के साथ प्रेम हो जाता है तो भाव बंधन छूट जाता है, भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। बस ये डिफरेंस है, जब हम खुद को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करते हैं तो काम कहलाता है, और वही काम हमारे बंधन का कारण बनता है। अतः यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः इंद्रिय तृप्ति भौतिक कलमश से अप्रभावित होने से अभाद तथा अपच्छिन्न स्वरूप से होती है, क्योंकि इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होती हैं। फलस्वरूप इंद्रियों की ऐसी तृप्ति का अनुभव आदान प्रदान करने वाले दोनों देवीय पात्रों को समान रूप से होता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जब आध्यात्मिक जगत में प्रेम का आदान प्रदान किया जाता है तो दोनों इंद्रिय दोनों को आदान प्रदान का सुख दोनों पात्रों को प्राप्त होता है। चूंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं, अतः यहाँ भौतिक प्रयासों की या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम तुनंतम ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है। आध्यात्मिक जो आनंद है जिसका स्पष्ट वर्णन पांचवें स्कंद में आएगा, जब ऋषभ देव जो है वो अपने पुत्रों को ब्रह्म सौख्यम के विषय में बताएंगे। नाहम देहो देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामान अहर्ते विट्ट भुजान, कि ये जो सुख हम इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं वो तो कुत्ते और सुअर भी आनंद उसका लेते हैं, है ना। वो सुख खाने का सेक्सुअल आनंद या फिर सोने का, आराम करने का, बच्चे पैदा करने का, वो सुख तो उसके लिए मनुष्य जीवन को गर्क करने की या दबा करने की कोई जरूरत नहीं है। कष्टान कामन अर्थिक विट भुजान, जो गंदगी खाने वाले, मलमूत्र का सेवन करने वाले कुत्ते और सुअर हैं, वो भी इस सुख को उतना ही लेते हैं, बल्कि मनुष्य से कई टाइम अधिक लेते हैं, है ना। बहुत खुला लेते हैं, मनुष्य को तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको तो कोई नहीं है, है ना। मनुष्य दो बच्चे पैदा करता है, सुअर तो इतने सारे बच्चे पैदा करता है, तो वो सुख जो कुत्ते और सुअर को भी प्राप्त है उसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। नायम देहो देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्थे विट्ट भुजान, फिर बोला किस लिए मिला है मनुष्य जीवन, ये तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम, ये दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। और उस शुद्धि थी, जब दिव्य तपस्या करने के बाद जीव शुद्ध हो जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, वो ब्रह्म सुख जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो भगवान के साथ संबंध जोड़ के भगवान के साथ प्रेम करने का सुख है, वो प्राप्त होगा। और वो सुख प्राप्त करने के लिए बस करना क्या है, ये जो मनुष्य जीवन है उसमें तपस्या करनी है। दिव्य, ये तपो दिव्यम, ये कोई महंगा सौदा नहीं। हम लोगों को कैसे लगता है, बहुत सारे लोगों को, कि मनुष्य देह पाकर अगर एंजॉय नहीं किया, मनुष्य देह पाकर यदि हमने आनंद नहीं लिया भौतिक सुख का, तो फिर ऐसा लगता है कि हमने अपना पूरा जो जीवन है उसको वेस्ट कर दिया। लेकिन वेस्ट नहीं हो रहा है, वेस्ट तो तब हो रहा है जब कुत्ते बिल्लियों की तरह इस संसार में केवल आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे भाग रहे हैं, वेस्ट तो तब हो रहा है। इतना अनमोल, इतना अमोलक ये जो जीवन है जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल, तपस्या थोड़ी सी यदि की जाए और उसमें भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये कितना सस्ता सौदा है, है ना। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो दिव्य सुख है वो तभी संभव है जब दिव्य इंद्रियां प्राप्त करके भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में प्रेम का आदान प्रदान होता है। और आगे यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताएं, सत्यं नियम्य यतयो यम कर्त हेतिम जह्यो स्वराटि वनिपान खनि नेत्रम इंद्र, सत्यं नियम्य यतयो यम कर्त हेतिम जह्यो स्वराटि वनिपान खनि नेत्रम इंद्र। सद्र्यंग नियम्य यतयो, सद्र्यंग मतलब कृत्रिम मानसिक तर्क या चिंतन, नियम्य मतलब वश में करना, यतय योगी जन, समकर्तम हेतु आध्यात्मिक अनुशीलन की परिक्रिया जहियो त्याग दी जाती, मतलब जब आध्यात्मिक जगत का आनंद प्राप्त होता है तो फिर कोई कृत्रिम या फिर कृत्रिम मानसिक तर्क या चिंतन करके या अलग से अपने आप को वश में करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि भौतिक आनंद इतना गंदा लगता है कि फिर उसका कभी, जब एक बार वास्तविक आनंद आ जाता है ना भगवान के प्रेम का, भगवान के नाम का, भगवान के सेवा का, तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब वास्तविक आनंद आ जाता है तो ये संसार के गंदे कीड़े मकोड़ों के जैसे आनंद जो है वो तुच्छ लगने लगते हैं। इसलिए स्वराडिव निपानख नित्र इंद्र, निपान मतलब कुआ, खनित्रम यानी खोदने का कष्ट, इंद्र वर्षा की नियामिक देवता, अभी इंद्र जो है उसके पास बहुत सारी वर्षा, उसको आनंद लेने के लिए किसी कुएं को खोदने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह से जिसको आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो जाता है उसको भौतिक सुख के लिए हृदय में इच्छा रहे कि कैसे, है ना। यहाँ अनुवाद देखिए, ऐसी दिव्य अवस्था में ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है, जैसा कि ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा किया जाता। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई गरीब आदमी पानी की आवश्यकता के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में वास्तव में संलग्न होता है तब इंद्रियों का ऐसा नियंत्रण तथा आध्यात्मिक पूर्णता एक साथ प्राप्त हो जाती है। मतलब आध्यात्मिक पूर्णता वो तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ में हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद इतना आनंद आ रहा होता है कि वो खुद ब खुद बहुत चीजों के लिए इच्छा ही नहीं करती। इसलिए महान मुक्त जीव आत्मा भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने के इच्छुक रहते हैं। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र सब ब्रह्मांड में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा कराने के लिए नियंत्रणकारी देवता है, अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार जो वास्तव में भगवान की प्रेममय सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को जानने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ना ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो वास्तव में भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में लगे रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा ध्यान से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुका होता है। अतः जीवन की वास्तविक सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा में वही भक्ति में लगे रहें। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ लोग ध्यान करते हैं, योगी जन जाके वो किस पर ध्यान करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप पर, ज्योति स्वरूप पर, और कुछ है ना परमात्मा का ध्यान करते हैं कि भगवान वो है जो हृदय हर एक हृदय में बैठे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं भगवान कण कण में है, तो इस तरह से उनको क्या करना पड़ता है, मानसिक चिंतन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, और इस तरह से भगवान इंद्रियों को कृत्रिम रूप से रोककर भगवान में लगाने का प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के साकार स्वरूप की सेवा करते हैं, जो भगवान को खिलाते हैं, जो भगवान के साथ प्रेम करते हैं, भगवान के लिए वस्त्र बनाते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं, भगवान के साथ बातें करते हैं, है ना, भगवान को बोलते हैं, सुबह होती है फिर भगवान को बोलते हैं आज कृष्ण तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, क्या खाओगे, फिर उनको ऐसा लगता है कि आज कृष्ण को ये खाने का मूड है, है ना, क्योंकि वो इतना भगवान के साथ प्रेम करते हैं कि उनको ऐसा फील होता है आज भगवान को मूड हो रहा है कि आज मैं उनके लिए हलवा पूरी बनाऊं या खीर बनाऊं, फिर भगवान के लिए खीर बनाते। और कभी कभी तो भगवान के साथ ऐसे बोलते हैं कि भगवान के सामने जाके बोलते हैं आज क्या बनाऊं, फिर भगवान उनको कुछ न कुछ अंदर से आता है, फिर बोलते हैं नहीं भाई इतना ये वाला बहुत मुश्किल लगता है, आज नहीं बनाऊंगी, आज मुझे बहुत जल्दी है, आज तो मैं कोई सिंपल सा प्रसाद बनाऊंगी, और कुछ बताओ क्या सिंपल, बताओ क्या खाओ। मतलब इतना भगवान के साथ उनका स्नेह होता है कि उनको लगता है कि हम भगवान के साथ रहते हैं। कभी तो देर से उठ जाते फिर बोलते इतनी देर आप सो रहे थे, है ना, मुझे तो जगाते कम से कम, है ना, मुझे जल्दी उठना था, मुझे कोई काम था, और कभी कुछ चीज नहीं मिल रही होती फिर बोलते कृष्णा कृष्णा प्लीज आओ दोनों साथ में करते हैं, देर हो रही है, ये हो रहा है, मतलब उनको ऐसा लगता होता है कि भगवान हर समय हमारे साथ है और डेफिनेट भगवान उनके साथ होते हैं। तो वास्तव में ये प्रेम का जो आदान प्रदान है वही वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। क्या हम कृष्ण से प्रेम करें, हम कृष्ण को अपना समझें, हम कृष्ण के साथ रहने का आस्वादन करें। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जीवन की अतः जीवन की वास्तविक सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रह जाए। बोल श्री कृष्ण भगवान की ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहेगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।